एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 647-290-3773
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा। सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन, 9058747171।
पाकिस्तान पैसे भेजना अब हुआ आसान। यूज लेम्फाई फॉर इंटरनेशनल ट्रांसफर्स। कनाडा से पाकिस्तान पैसे मिनटों में पहुंचते हैं बराह रास्त, जिसको आप भेजना चाहें। बेहतरीन एक्सचेंज रेट और पैसे पहुंचे मिनटों में। डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले और एप्पल स्टोर। कोड पाकिस्तान इस्तेमाल करने पे आपको मिले $10 का कैश बैक। अपने फोन से बराह रास्त बैंक अकाउंट में पैसे भेजना शुरू करें मिनटों में और बिना किसी फीस के। लेम्फाई
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر
6478724900
چاندنی بینکویٹ ہال
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز Sound System Innovations, Chandni Banquet Hall.
30 years of hospitality experience. Corporate event, exhibition, expo or any celebration.
Sare package ka naam, Chandni Banquet Hall. Aaj hi call kijiye. 437-218-8734. ChandniHalls.ca.
यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, प्लानिंग फॉर वेकेशन।
हवाई टिकट की कीमतें तो आसमान को छू रही हैं।
अरे मेरे लिए कोई डील तो देखो।
और मशीन के बजाय रिप्रेजेंटेटिव से बात करें।
है ना एयरविंग ट्रेवल, होलसेल रेट, पाकिस्तान, इंडिया और मिडल ईस्ट, एवरीवेयर वेयर यू वांट टू ट्रेवल।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
पर्सनलाइज्ड ट्रेवल सॉल्यूशंस, अफोर्डेबल, इजी एंड डिस्काउंटेड एयरफेयर्स।
Airwing Travel and Tours
दांतों का कोई भी मसला हो या करानी हो डेंटल क्लीनिंग, डॉक्टर फयाज एंड एसोसिएट्स आपकी पहली चॉइस। पैराडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, डेंटल इम्प्लांट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड मच मोर। वार्म एंड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जहां आप अपनी जबान में अपनी तकलीफ बयान कर सकते हैं। आपके पास डेंटल इंश्योरेंस है या नहीं, कोई मसला नहीं। स्कारब्रो में एक और मिसिसागा की दो लोकेशंस पर आपको सर्व करते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए अभी कॉल कीजिए 9052325678 मिसिसागा 4167579999 स्कारब्रो।
क्या आपकी फैमिली में मसाइल चल रहे हैं और हालात आपको लेके जा रहे हैं डाइवोर्स की जानिब, या आपका प्यारा बिना विल लिखे या विल लिखकर आपको छोड़ के जा चुका है? विल के मुतालिक कोई भी काम हो या आपको चाहिए ट्रस्टीशिप सर्टिफिकेट, या आपकी रियल स्टेट क्लोजिंग नजदीक है और आप हैं एक तजर्बेकार लॉयर की तलाश में, इन तमाम कामों के लिए आपकी मदद के लिए एक बाएतमाद इदारा मलिक लॉ ऑफिस, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स मोहम्मद अतीक मलिक आपकी तमाम कानूनी मसाइल में आपकी रहनुमाई करेंगे। GTA में दो लोकेशंस, मिसिसागा 168 क्वीन स्ट्रीट साउथ यूनिट 201, इन स्कारब्रो 1825 मार्कम रोड यूनिट 205। कॉल टुडे मलिक लॉ ऑफिस 9052914455 9052914455।
ویلکم بیک تمام سامعین کو جو 770 ایم ڈائل پر سن رہے ہیں پروگرام ساز و آواز، اور ہمیں ای آواز ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں. جناب عامر احمد آپ کے ساتھ پھر شامل ہیں، اور اس بار جو ہیں ہم پکڑ کر لے آئے ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ بہت دیر ہو گئی ہے، سامعین اور ناظرین کھٹی میٹھی خبریں سننے کے لیے بےتاب ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ کاروباری چیز میں مصروف ہیں، کچھ اپنا وہ ان کا وہ ہے نا اسنیپ چیٹ فلٹر، اس کے ساتھ کچھ کھیل رہی ہیں. تو اب جب میں ڈائریکٹ بول دیتا ہوں نا تو خود سیدھی ہو جاتی ہے. ابھی سیدھی ہو گئی، کھینک کھینک کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ میں ریڈی ہو گئی ہوں. آپ نے ان کی سن لی ہوں گی ساؤنڈ افیکٹ، اب ان کو پروگرام میں بھی شامل کر لیتے ہیں. خوش آمدید، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟
ڈبلو ایس،
تھینک یو.
وڑکم، ہاؤ آر یو؟
کیا کر رہی تھی ابھی آپ فون میں؟ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے سامعین اور ناظرین ویٹ کر رہے ہیں، اور آپ جو ہیں کچھ فون میں کر رہی تھی.
پتے کھیل رہی تھی،
تین پتی.
ہاں جی، ہم نے کہا آپ نے تو سانس لینے نہیں دینا، تو ہم ذرا کچھ تھوڑا سا ریلیکس کر لیں. ہیں جی،
سارا دن کیا کرتی ہیں؟
سارا دن تمہاری بدبختیاں.
میری سارا دن میری بخت، یہ بھی مجھ پہ ڈال دیا. میں آپ کی کوئی کرسی چرا کے بھاگ گیا، آپ کا کمپیوٹر بند کیا.
نہیں، تم نے میری بھینس چرائی ہے.
بھینس چرائی ہے؟
یس، جس کا آج کل دودھ پی رہے ہو، جس کی وجہ سے چہرے پہ بڑی رونق آ رہی ہے.
یہ تو بس خدا کا نور ہے
جو
انسان کے دلوں میں اتارتا ہے اور چہرے پہ دکھتا ہے.
ہاں، لیکن وہ قمیض پہ نہیں دکھ رہا. آج کل بہت کالا پہن رہے ہو تم،
نظر بد سے بچنے کے لیے.
کہیں ایسا تو نہیں کہ دل کا ریفلیکشن باہر آ رہا ہے؟
نو 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 نو، جو ہلکا ہلکا سرور ہے تو یہ
آنکھوں کا فطور ہے.
یہ جو سامنے کا کالا، اس کے پیچھے سفید ہے.
اچھا، اس کے پیچھے ہماری آنکھوں کا فطور ہے.
ہاں،
اس کے پیچھے بھی کالا ہی ہے ویسے.
نیگیٹو انرجیز کو روکتا ہے.
اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے.
اسی لیے میں آج کل پہن رہا ہوں.
اچھا اچھا،
میں زیادہ بیمار رہنے لگ گیا ہوں، تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ یار آپ زیادہ کالا
نظر اتارے.
نظر نہ، نظر وزر کیا اتارے، بس
وہ کالا مرغا شرگا کو یوز کو کچھ کرو.
ایسا کانسیپٹ نہیں ہے.
اچھا،
لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ ہی صحت دینے والا ہے، اللہ ہی شافی ہے. تو پروٹیکشن ضرور کرنی چاہیے، ظاہر ہے اس نے قرآن میں کہا ہے، سورہ ناس میں، اس کے مطابق جو آپ سے پروٹیکشن ہو سکے آپ کریے، وہ حقیقت.
اچھا، ویسے تم یہ میڈیکلی بھی بات کر سکتے تھے، زیادہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے. مولوی جو ہے صرف ماجد بھائی کو رہنے دو، تم زیادہ مولوی بننے کی اب کوشش نہ کرو.
اب میں آپ کو چھیڑ دیا نا بندے کو، آپ کی نیوز پانچ منٹ ڈیلے کر کے. پرابلم مسلمانوں کا بتاؤں کیا؟
آئے ہائے ہائے،
سنیں، میں بھی اس میں شامل ہوں.
اچھا،
اور آپ تو ماشاءاللہ دو اسٹوڈ پہ اندر اسٹوڈ ہیں. کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی ناکامی وہ کیا ہے؟ وہ جس پر عارفہ آپ آج بھی بات کر رہی تھی، کہ آخری خطبے کی جو لائن انہوں نے بتائی کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جسے ہم نے سب سے پہلے چھوڑ دیا.
اس لیے کہ ہم اس پہ عمل تو کر نہیں رہے،
عمل نہیں کرتے.
میں یہ سمجھتا ہوں، قرآن قرآن اسلام
اسلام، وہ مسلمان ہیں کہ اس کو تو علم، مطلب علم میں، تدریس میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا. سب سے آگے
ود ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ بتائیں.
میں دیکھیں تعلیم بال
خراب کر دیتی. مصور آپ نے کل کا ایک ورڈ،
مصور پینٹر.
اچھا اچھا، اور اچھا، وہ ویری گڈ. اچھا، آپ آج تدریس بول رہے ہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ تدریس کیا ہے؟
میں اس کو بعد میں بتاؤں گا، پہلے اب میں اس کو اپنا کمپلیٹ کر لوں. ہمیں جو مسلمان
سمپل سیدھی اردو بولا
پٹ رہے ہیں،
پٹ رہے ہیں
تعلیم، چاہے وہ دینی
زیرو پہ تعلیم ہے،
دنیاوی ہو، تدریس عمل نہیں کر پا رہے ہیں. اور سوچیں جبکہ ہمیں پہلا لفظ میں آج پڑھ رہا تھا، ظاہر ہے سب کو معلوم ہے وہ کیا سکھایا. اقرا بسم ربک الذی خلق،
پڑھو.
ٹھیک ہے،
پڑھو
پڑھو. تو اب ہم نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا نا. پھر ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ ہر، تو جو آپ کہہ رہی تھی آپ کی بات پر اب آؤں کہ یار یہ بات تم جو ہے وہ سائنس سے ہی بتا سکتے تھے، تم نے کیوں قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا؟ وہ اسی وجہ سے ریفرنس دیا کہ ہم نے، مجھے بتا دیں اتنے لوگ ابھی ہمیں سن بھی رہے ہیں اور ٹی وی دیکھ بھی رہے ہیں، الحمدللہ کئی ہمیں جو پاکستانی سن رہے ہیں اور مسلمان.
اب بھائی جان جو ہے اب پولیٹیکل بیان دیں گے. دیکھیں، میں نے پولیٹیکل نہیں تھا، سب مسلمان، مطلب ہے اس میں کوئی ہندو بھی ہوں گے، سکھ بھی ہوں گے.
سن تو لیں بات کو، کہ ہمیں کئی جو ہیں مسلمان بھی سن رہے ہیں.
اب تم نے کئی لگایا ہے، پہلے کئی نہیں لگایا تھا.
اب یہ بتا دیں گے کتنے لوگ ہم سب سمے صبح جو ہیں گھر سے کام سے جس وقت نکلتے ہیں، جس وقت بھی آنکھ کھلتی ہے قرآن پڑھتے ہیں، گن لیں आप खुद ही अपने आप से सवाल कर लें, कितने लोग ऐसे
कुरान पढ़ना जो है वो एक बात है, अमल करना जो है ना वो मेन बात है।
पढ़ेंगे तो अमल करेंगे,
नहीं लोग हमारे जो है सारी सारी जिंदगी उसको बस पढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, आप नहीं मानते ना, वो उसकी वजह यही है कि वो इसीलिए हमारी हालत इतनी खराब है कि हम बस उसको रा 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 करके पढ़ रहे हैं, उसके वर्ड्स क्या हैं उसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। मैंने इससे पहले भी एक दफा आपको कहा था, बहुत अरसा पहले जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ पहली दफा हज पे गई थी, तो मैं उस वक्त जाहिर है जो है मेरी बहुत छोटी उम्र थी, और हमारे तो ये जो आइडियाज है ना पाकिस्तान में कि कुरान बस उसको जो कपड़े में लपेट के ऊपर रख दे, वहां पर हमने जाके देखा कि नीचे रख के जमीन पे जो काबा की थी उस पे बैठ के पढ़ रहे थे। तो मैंने पूछा बल्कि उनसे स्पेसिफिकली कि ये कुरान को आपने कैसे इधर रखा है, उन्होंने कहा जी ये हिदायत की एक किताब है, इसको इसलिए भेजा है कि इसको पढ़ो और इस पे अमल करो। ठीक है जी, हमने क्या किया कपड़ों में लपेट के ऊपर रख दिया है बस, और उसको बस अरबिक हमें आती चूंकि नहीं है और हम कोशिश भी नहीं करते हैं कि हम उसका तर्जुमे, अगर हम उसको पढ़ते होते तो ये हमारा हाल होता जो अभी हुआ हुआ है।
तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ,
हाँ
जरूरी नहीं कि हर चीज साइंस, सब कुछ सारी साइंस कुरान के अंदर है।
हाँ तो नहीं, हर चीज को लेकर मैं कह रही हूँ, सिर्फ जोड़ने की उसके साथ जरूरत नहीं होती है। हम जो भी कुछ पढ़ें एक लाइन भी अगर हम पढ़ते हैं ना उस पर अमल होना जरूरी है, जो कि हम करते नहीं है। और वैसे हमने ड्रम पकड़ा हुआ है इतना बड़ा पाकिस्तान में और उस पर ढोल पीट रहे हैं, इस्लाम 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 बस यही करते जा रहे हैं, तो उसका कुछ फायदा नहीं है और इसीलिए हमारी वो हालत है जो कि आज है।
टेंशन नहीं, हाँ बस ये मिसाल थी, मैंने आपको दे दी, लोगों को जो है वो समझ आ जाएगी।
हाँ अच्छा, पॉलिटिकल बयान भी देने की जरूरत नहीं है कि लोग मेरी तरफ आ
जाए, कोई ताल्लुक नहीं, मैं बिल्कुल इसको फॉलो ही नहीं करता, मुझे समझ भी नहीं आता।
हाँ लेकिन सिर्फ किताब जो है एक जो है वो नहीं, किताबें और भी पढ़नी चाहिए।
मुझे डांट देते हैं यार आप जो है वो
किताबें और भी पढ़नी चाहिए, किताबें जो जैसे कि जो नोबेल लॉरिएट्स हैं उनकी किताबें पढ़नी चाहिए, कोई इनोवेशन के ऊपर कोई रिसर्च के ऊपर वो भी किताबें पढ़नी चाहिए। इकरा जो आपने कुरान का लफ्ज बोला है ना, इकरा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप रिलीजियस बुक पढ़ें, इकरा मींस पढ़ाई,
मैंने तो वर्ड भी इल्म का ही यूज़ किया,
इल्म हासिल करें। और उसके लिए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वो भी है हदीस भी है कि भाई आपको अगर चीन तक, यानी उस जमाने में कितनी मुश्किलों में लोग जो घोड़ों खोतों पे और बैठ के और उस पे कैमल्स पे बैठ के जाते थे, फिर भी अगर आपको चीन जाना पड़े तो आप जाएं, तो मींस एजुकेशन। और वही कल भी मैं बात कर रही थी कि एप्पल के जो तीन टॉप क्लास जो पीछे रिसर्चर बैठे हैं एआई के ऊपर, वो तीनों इंडियंस हैं। और यही एग्जैक्टली इंडियंस ने पिछले जो 30 से 35 साल में किया ना, छोटे से घर में रह लिए हैं, टोटल एक सफेद कमीज और एक जीन खरीद ली है, दाल चावल थोड़े से खा लिए हैं, बच्चों को सिर्फ तालीम दी है। एज अ रिजल्ट टुडे दुनिया के जो टॉप क्लास जो कंपनीज हैं, खासतौर पे जो 25 सब बड़ी कंपनीज हैं, उन सब के अंदर इंडियंस बैठे हैं हेड्स बन के।
तालीम
अगर आपके पास नहीं है तो यू आर नो वेयर इन द वर्ल्ड। बस सबसे अंडरलाइनिंग बात यही है,
आप ऐसा करिए लोगों को इल्म बांटिए।
बस सर मैंने आपको बहुत नॉलेज दे दी है,
खट्टी मीठी जो आप खबरें सुनाती है, बहुत नॉलेज में लोगों के इजाफा हो जाता है।
हाँ बहुत कनॉलेज में इजाफा होता है, तो अब तुम्हें बहुत कनॉलेज दे दी है, अब लोगों को भी कनॉलेज देंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय क्यूटीएल, दिस इज क्विक ट्रक ल्यूब। इनका जनाब 12 सितंबर को यानी कि कल होने वाला है वन डे ऑयल चेंज स्पेशल, $125 का ऑफ आपको देंगे। नेपनी लोकेशन के ऊपर ये अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, फ्री ट्रक ग्रीस देंगे, इसके अलावा आपको फ्री बारबेक्यू भी है। दे आर लोकेटेड एट एग्जिट 579 हाईवे 401, तो अगर आपके पास ट्रक है मतलब शर्त ये है कि ट्रक होना चाहिए फ्री बारबेक्यू खाने के लिए, ऐसा ना हो कि आमिर की तरह नदीदापन दिखाएं और फ्री बारबेक्यू खाने पहुंच जाएं। नहीं, आपके पास अगर ट्रक है और उसका कोई काम कराना है तो फिर जाएं और फ्री बारबेक्यू का भी आप एंजॉय का मजा लें। अच्छा जी, और जनाब जैसे आमिर साहब ने बहुत पैसे बचा लिए ना 1775, तो हम भी बहुत इंप्रेस हो गए थे, हम गए थे तो हमारे 400 बचे थे, इसके सबसे ज्यादा बचे हैं, इसीलिए ये जा रहे हैं जी यूरोप के टूर पे। तो जनाब अगर आपके पास भी दो गाड़ियां और एक घर है, आपका भी $1775 बचेगा। आप राजा बादशाह जी को फोन करो, ऑल स्टेट में होते हैं, बहुत जबरदस्त, और भी इनके पास बेशुमार और भी जो है वो सर्विसेज हैं जो आपको दे सकते हैं। इनका नंबर है 6472903773, ओंटारियोज लार्जेस्ट हलाल पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट। दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, फैसल चट्टा साहब के हैं ये, और जबरदस्त किस्म का खाना है,
तो आप जा सकते हैं। अगर आपको मिसेस आगा जाना है तो इसका नंबर है 9052323663, और अगर आपको ओकविल में जाना है तो इसका नंबर है 9052262294। जाने से पहले अगर आप ऑर्डर बिठाना चाहते हैं तो ऑर्डर बिठा दें और फिर उसके बाद आप जाएं। और जनाब लेम्फाई अपने एंड्रॉयड और एप्पल जो फोन्स हैं उसके ऊपर ये ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं, और अगर आपके पास आमिर की तरह पैसे हैं और आप $250 अपने भेजना चाहते हैं प्यारों को अपने वतन में, तो आपको ट्रांजैक्शन पे $30 कैशबैक मिलेगा और जीरो ट्रांसफर फी है। जबरदस्त किस्म की सर्विस है, मिनटों में आपके जो पैसे हैं वहां पे मिल जाते हैं। तो ये सारी सर्विसेज इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए हैं, तो आप जरूर लेम्फाई का इस्तेमाल करें। ठीक है जी, आज की जनाब बिग ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग न्यूज है ये कनाडा की, और मुझे नहीं पता कि अब कनाडा के साथ होने क्या वाला है इस खबर के बाद। इस खबर के बाद मुझे लगता है अमेरिका से बहुत ज्यादा बैकलैश आएगा इनको और बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम होने वाली है। ये आज की जो खबर है ये इसने आज लोगों को कनाडा के अंदर कम अज कम बहुत परेशान किया। लिबरल गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी आज स्टेटमेंट आई है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है जिसमें कि उसने कहा है We are suspending 30 arms export permits held by Canadian companies. इस चीज का जो जिक्र है वो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारी मेलनी जोली साहिबा, उन्होंने कहा है कि कोई भी थर्ड कंट्री जो कि कनेडियन मेड आर्म्स के वेपन्स ले रहा है, जो किसी सूरत से भी गाजा में पहुंच रहे हैं और इतने ज्यादा ह्यूमन लाइफ का वहां पे लॉस हो रहा है, उसके ऊपर हम टोटल बैन लगा रहे हैं। आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले यूएस ने यह कहा था कि हम एक क्यूबेक बेस्ड कंपनी है जनरल डायनेमिक्स जो है उनसे, और एक और कंपनी जो है जिसमें कि उन्होंने कहा था टेक्निकल सिस्टम्स इंक बेस्ड इन टाउन ऑफ रिपेंटनी ईस्ट ऑफ मॉन्ट्रियल, उसमें उन्होंने कहा था जी कि ये इससे हम कुछ पार्ट्स जो हैं वेपन्स के वो सोर्स करते हैं और फिर जो है कोई जो भी वेपन्स ये लोग अमेरिका में बनाते हैं वो बना के फिर इसराइल को भेजा जाता है। ये जो लिबरल कॉकस का रिट्रीट चल रहा है नैनेमो में बीसी के अंदर, वहां पर ये रिपोर्टर्स के साथ बात कर रही थी मेलनी जोली साहिबा, और उन्होंने कहा जी कि ये जो है ये अंडर द प्रपोज्ड आर्म्स सेल टू इसराइल जो स्टेट डिपार्टमेंट था उसने अप्रूव किया था 50,000 हाई एक्सप्लोसिव मॉर्टर कार्ट्रिजेस विथ फ्यूजेस जो के बनते हैं क्यूबेक में, वो इन्होंने हमसे लेने थे जिसकी के जो प्राइस है $61.1 million है, कनेडियन डॉलर्स ये 83 million कनेडियन डॉलर्स बनते हैं। जो यूएस की कंपनी है और इन्होंने ये कहा था स्टेट डिपार्टमेंट ने कि ये 2026 तक हमारी डील जो है कनाडा के साथ रही थी। यूएस ने जो कंपनीज लिस्ट की हुई है एज कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके साथ ये सारी चीजें लेंगे कनाडा से अपने वेपन्स में यूज करने के लिए, वो हैं जनरल डायनेमिक्स ऑर्डिनेंस एंड टेक्निकल सिस्टम्स इंक, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जोली साहबा ने कहा है कि हम सस्पेंड कर रहे हैं 30 एग्जिस्टिंग परमिट्स जो हमने समर में किए थे जिनकी के कॉस्ट जो है 136 मिलियन बनती थी, और ये अप्रूव किया गया था मिलिट्री एक्सपोर्ट में के वो दिए जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के भी जो डॉक्यूमेंट सामने आए थे उसके अंदर भी ये सारी डिटेल्स जो थी। मेलनी जोली साहबा ने इसकी डिटेल्स देते हुए ये कहा कि हम बिल्कुल जो है, हालांकि उन्होंने कंपनीज के नाम नहीं लिए लेकिन लोगों ने कंपनीज के ये नाम जो है यूएस की जो लिस्टेड वेबसाइट है उससे उठाए, उन्होंने कहा जी कि हम कोई भी ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि वेपन्स के पार्ट्स हम सप्लाई करते थे यूएस को जो कि इसराइल में जाते थे उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं। 210 वैलिड परमिट्स डेटेड December 2020 जिसकी के अमाउंट थी $154.8 million जिसमें से के 18 मिलियन जो थे वो ऑलरेडी वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाइंट्स जो हैं इसराइल में उनको दिए जा चुके हैं और ये अप्रूव किए गए थे, और उस वक्त जो था उसके बाद 24 मिलियन के जो परमिट्स थे वो अप्रूव किए गए थे October 7, 2023 को। तो जो मुस्लिम्स ऑर्गेनाइजेशन थी कनाडा में वो कॉन्स्टेंटली लिबरल गवर्नमेंट को कह रही थी कि ये सारे के सारे वेपन्स जो हैं दे आर गोइंग टू इसराइल और वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको गाजा के खिलाफ, तो ये आप इसको रोके। तो अब पता नहीं है कि जैसे मैंने आपको कहा कि अब अमरीका इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनके जो ये थे डील्स ये 2026 तक के थे, तो ये कनाडा के ऊपर जो है मुश्किल आ सकती है। लेकिन अभी शायद इलेक्शन का वक्त है, कुछ थोड़ा सा इतना इनके ऊपर कुछ नहीं आएगा डेंट, लेकिन जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी तो वो पूछेगी इनको कि भई आपने ये कैसे रिवोक किए हैं सारे, तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। लिबरल एमपीज जो हैं उन्होंने कहा जी कि वो सारे के सारे टूडो साहब के साथ खड़े हुए हैं और वो उनको हमेशा जो है वो इनके साथ रहेंगे और वो समझते हैं कि ये जो इनके बातचीत जो इनकी चल रही है यहां पे उसके अंदर जो इनके पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट्स हैं टूडो साहब के साथ कि वो उनको नेक्स्ट इलेक्शन में कैसे लीड करेंगे वो इम्प्रूव किए हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसका सेशन शुरू होने वाला है। ये 3-day रिट्रीट जो चल रहा है यहां पे नैनेमो में, ये फर्स्ट चांस था टूडो साहब का अपनी टीम के साथ मिलने का, और इससे पहले आपको पता ही है कि जो ट्रोनो सेंट पॉल की जो राइडिंग थी उसमें ये लूज कर गए थे, बड़ा जो है लॉन्ग होल्ड इनका था यहां पे, कंजर्वेटिव ने फिर इसको अब इस दफा जीता था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा कि ये टोरीज को हमने कैसे फेस करना है तो उसके लिए रीयूनाइट करने की जरूरत थी। इसके साथ साथ जाहिर है कि कुछ लोगों ने तो बड़ा कहा कि भाई ये रिट्रीट जो है उसमें काफी प्रॉब्लम्स आएंगे और ये है वो है, लेकिन फिर भी जो मीडिया ने बात की ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द मीटिंग्स, तो उन्होंने एमपीज ने मोस्टली कहा कि हम एक पॉजिटिव आउटलुक जो है वो देखते हैं और हम ट्रूडो के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी कहा जा रहा है कि एमपीज के साथ क्लोज डोर मीटिंग्स कर रहे हैं और उनसे क्वेश्चंस ले रहे हैं, उनके आंसर दे रहे हैं, और इसके बाद जो है वो रिकन्वीन करेंगे अब ओटावा में ऑन मंडे, जिस वक्त ये फॉल सिटिंग जो है इनकी अब शुरू होगी। तो इसमें अब नया टेस्ट आएगा कि अब जब सब लोग भी इनके खिलाफ हो गए हैं, यानी कि एनडीपी इनसे अलहदा हो गई है, कंजर्वेटिव पार्टी कह रही है कि हम जो है वो तो जो है अब नया इलेक्शन चाहते हैं, तो अब ये टेस्ट जो है ये फेस करेंगे। पीएम पॉलीवर ने इस वक्त कहा है कि जैसे ही हम अब आएंगे मंडे को वापस तो हम एक नो कॉन्फिडेंस मूव लेकर आएंगे पार्लियामेंट के अंदर, और हम चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन जो है उसको ट्रिगर किया जाए। उन्होंने आज पीएम पॉलीवर साहब ने एनडीपी और ब्लॉक क्यूबेकवा को भी कहा है कि आप भी हमारी इस मोशन की सपोर्ट करो जब हम ये पार्लियामेंट में लेकर आते हैं। उन्होंने मीडिया को कहा कि ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टाइम है कि क्या एनडीपी वाले हमारे साथ चलेंगे या ये टाइम जो है इसको शट अप कर देंगे, यानी कि जो इलेक्शन का टाइम है। एनडीपी की अभी डील खत्म नहीं हुई थी लिबरल्स के साथ, तभी से पीएफ पॉलीएफ साहब जो हैं वो जगमीत सिंह साहब से कह रहे थे एक लेटर में जो उन्होंने लिखा था अगस्त के एंड पे कि भई आप अपना इनके साथ छोड़ें अलायंस और फॉल इलेक्शन बुलाएं। नेक्स्ट फिक्स्ड इलेक्शन की जो डेट है वैसे अक्टूबर 2025 है, यानी कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में फॉल के अंदर है, लेकिन ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव है वो कहते हैं जी कि ये हम लाना चाहते हैं, और उसके ऊपर आज पीएफ पॉलीएफ साहब ने कहा है कि वी वॉन्ट टू ब्रिंग down the costly coalition trigger carbon tax election or we want to ask Jagmeet Singh if he has sold Canadians again। तो ये उन्होंने आज बातें की हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है वो 16 सितंबर को अपना सेशन रिज्यूम करेगा, लेकिन जगमीत सिंह साहब के जो टॉप एडवाइजर हैं एन मैग्रॉ, उन्होंने आज कहा है कि सिंह साहब इस मूड में नहीं है कि अर्ली इलेक्शन लाया जाए, तो ही उन्होंने उनके वर्ड्स हैं ये कि ही इज नॉट पर्टिकुलरली ईगर टू ट्रिगर एन इलेक्शन। तो अब हाउस में वापस आएंगे तो देखेंगे कि जी क्या माहौल बनता है, उसके ऊपर फिर आगे बातचीत होगी। हाल्टन रीजनल पुलिस जो है उसने कहा जी कि हमने एक ग्रुप पकड़ा है जो कि ऑटो थेफ्ट के अंदर इन्वॉल्व था, और 40 के करीब जो हैं वो उन्होंने गाड़ियां चोरी की थी हाल्टन और जीटीए में, जिसकी के प्राइस $3 मिलियन है। ज्यादातर ये जो गाड़ियां थी ये जीटीए से चोरी की गई थी और फिर उनको ओवर सीज में शिप किया जाता था। उन्होंने कहा जी कि ये हमने इन्वेस्टिगेशन मई में बिठाई थी जब एक स्टोलन टोयोटा टंड्रा चली गई थी, यानी कि चोरी कर ली गई थी हैमिल्टन से, और फिर हमने उसको बर्लिंगटन में फाइंड आउट किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कुछ रेंटेड होम्स जो थे जीटीए में उनको भी काफी देर से हम सर्वेलेंस पे डाले हुए थे और इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, और हम देख रहे थे कि ये ग्रुप जो है हाई एंड व्हीकल्स मेनली टोयोटा टंड्रा लेक्सस ऑरएक्स 350 सब्स जो है उनको रात के वक्त लोगों के प्राइवेट ड्राइव में से लेके जाते थे, वो गाड़ी का पिछला शीशा जो था उसको डैमेज करते थे और फिर रीप्रोग्राम करते थे ब्लैंक की फॉब्स को इनको चोरी करने के लिए। उन्होंने आज एक रिकवर किया टॉय हॉलर आरवी जो कि पुलिस के हेडक्वार्टर्स के बाहर खड़ा हुआ था, जो कि रिजेंबल करता है जो रेगुलर गाड़ी है उससे। वो कहते थे कि ये गट कर देते थे गाड़ी को और फिर ड्राइव करके ले जाते थे और ट्रांसपोर्ट कर देते थे बाहर। पुलिस ने कहा जी कि हमने इस तरह की बहुत सारी जो व्हीकल्स थी ये जो गटेड आरवी थी खासतौर पे, ये हमने स्कारब्रो के एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में देखी थी और फिर वहां पे हमने ओपीपी की हेल्प से इनको पकड़ा है। हमने, वो कहते हैं जी, हमने चार्ज किया फिर ड्राइवर को, जिसको जो के फॉर ट्रैफिकिंग स्टोलन प्रॉपर्टी एंड अदर ऑटो रिलेटेड ऑफेंसेज, और ये कई महीनों से ये इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ट्रोनो और ओशावा में। इसके साथ साथ जो है वो कहते हैं जी 55 चार्जेस हम लेकर आए हैं अगेंस्ट 8 सस्पेक्ट्स। चार जो है कस्टडी में है, चार के लिए कैनेडा वाइड वारंट्स जो हैं वो डाले गए हैं। वो कहते हैं जी ये सारे के सारे जो हैं अल्जीरियन नेशनल्स हैं, वैसे तो ये लॉफुल रेजिडेंट्स ऑफ क्यूबेक हैं, लेकिन ये बहुत सारी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। कैसे? ये जो सर्विस ऑन्टेरियो की लोकेशंस के अंदर जो लोगों के साथ ये मिले हुए थे तो फ्रॉडुलेंटली ये ट्रांसफर कर लेते थे व्हीकल्स, तो उस सिलसिले में आज इनको पकड़ा है। इनमें से एक बंदा पहले पकड़ा गया था, विंकल लेजार्ड, 43 इयर्स का था, ट्रोनो का था। इसके ऊपर 101 चार्जेस हैं। इसके अलावा जो दूसरा आदमी आज पकड़ा है वो ट्रोनो रेजिडेंस है, क्रिस कैटिक, 34 इयर्स उसकी एज है, उसके ऊपर आज 95 चार्जेस जो हैं वो डाले गए हैं। तो ये ऑटो से रिलेटेड जो है काफी इन्होंने लोग पकड़े हैं। इसके अलावा जो पुलिस ने एक काशिफ खान साहब को, 51 इयर्स उनकी एज है, उनको मिसिसागा का रहने वाला है, उसको पकड़ा है क्योंकि उसने अपनी जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी थी उसको बेतहाशा जो है वो बिल बना के लंबा चौड़ा दे दिया था मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, और हालांकि वो जो इसने रिपेयर्स थी वो की नहीं थी एंड ये फ्रॉडुलेंट बिलिंग जो इसने की थी बिटवीन 2017 एंड 2022 की थी इन द कमर्शियल प्रोजेक्ट इन रिचमंड स्ट्रीट, ऑन रिचमंड स्ट्रीट एंड यूनिवर्सिटी एवेन्यू एरिया में, इसकी टोटल वैल्यू जो थी $6 मिलियन है। तो ये जो था ये रीलोकेट हो गया था यूएस से, वहां से इसको जी एक्स्ट्राडाइट करके ऑरलैंडो फ्लोरिडा से लास्ट वीक लेकर आए हैं और अब ये क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहा है यहां पे। टोरंटो पुलिस सर्विसेज ने बहुत शुक्रिया अदा किया है यूएस की होमलैंड सिक्योरिटी का और यूएस मार्शल्स सर्विसेज का फॉर देयर असिस्टेंस इन दिस मैटर। तो ये जनाब आज क्राइम की बड़ी खबरें थी। अच्छा जनाब, जिन्होंने कल देखी कमला हैरिस और ट्रंप साहब की जो स्पीच है, तो जो डिबेट थी, जो डिबेट इनके बीच में चल रही थी, उसके अंदर लोगों ने कुछ मेन किस्म जो है वो किए हैं, फाइंड आउट किए हैं कि भई कैसी इनकी बॉडी लैंग्वेज थी और ये क्या कर रहे थे ये दोनों। इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि जो फिलाडेल्फिया के अंदर इनकी दोनों की चल रही थी उसके अंदर कमला हैरिस जो है वो ट्रंप साहब दोनों ही चल के दो डिफरेंट जो है वो पॉइंट से स्टेज के ऊपर आए, लेकिन कमला हैरिस जो है वो जाके ट्रंप साहब से उसने हाथ मिलाया और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, कमला हैरिस ऐसे करके उसने बोला, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन पर्सन उससे मिल रही थी और ट्रंप साहब लग रहा था कि शायद हाथ नहीं मिलाना चाहते, बड़ा फोर्स किया उन्होंने अपने आप को इनसे हाथ मिलाने के लिए। इससे पहले जो बाइडन साहब और ट्रंप साहब की स्पीच जो डिबेट जून में हुई थी उसमें दोनों ने हाथ नहीं मिलाया था। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जी कमला हैरिस ने बड़ा ये पावर मूव जो है वो शो किया है, ट्रंप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कमला हैरिस जो है स्पीच के सारा वक्त जब ट्रंप साहब बोलते थे तो उनका फेस बहुत ही जो है एक्सप्रेसिव था, अपनी आईब्राउज वो रेज करती थी, कभी हंसती थी इन डिसबिलीव के जो ट्रंप साहब हैं वो क्या बात कर रहे हैं, फिर उनको रोकती थी, फिर उनको क्विज करती थी, फिर उनसे पूछती थी, फिर उनको कमेंट्स देती थी, फिर कहती थी दिस इज नॉट ट्रू। तो बड़ा लोग जो है कह रहे हैं कि बहुत एक्सप्रेसिव फेस था, जबकि ट्रंप साहब जो है बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशन था, कभी कभी थोड़ा सा स्माइल कर लेते थे और अपना, लेकिन हेड शेक करते रहते थे, नहीं नहीं ये झूठ बोल रही है, हम आप इसके ऊपर ना ट्रस्ट करें, ये बिल्कुल लाइज हैं, ये अगेन शी गोज अगेन, हियर शी गोज अगेन, शी इट्स अ लाइ, ऐसे बोलते रहे दोनों जो हैं, एक दूसरे को रोकते रहे और बीच बीच में बोलते रहे और काफी इन्होंने एक दूसरे के ऊपर जो है वॉइसिस भी रेज की। कमला हैरिस जो उसकी 59 इयर्स एज है और वो कहते हैं जी वो कभी कभी घूम के देख रही थी ट्रंप साहब की तरफ और एक पॉइंट पे तो उन्होंने उनको डांटा भी। ट्रंप साहब जो 78 इयर्स के हैं वो बिल्कुल सीधा देख रहे थे और ये जो है जब बात करती थी तो वो बड़े अनॉय हो जाते थे। उसके बाद जो उन्होंने बड़ा एक इमोशनल जो है वो बातें करना शुरू की कि अमरीका के अंदर ये हो गया है, ये हो गया है, क्या आप ऐसा प्रेजिडेंट चाहते हैं, तो बड़ा लोगों को इमोशनली वो करने की कोशिश की। ट्रंप साहब बिल्कुल इनएक्सप्रेसिव रहे। उसके बाद जब ये कुछ बातें करते थे जिससे वो नहीं एग्री करती थी तो उनको रोकती थी, ये बीच बीच में से उनको वो करती थी। फिर ट्रंप साहब ने बड़े गुस्से में जो है कहा, उन्होंने कहा कि जो है ये आप ये जो बातें कर रही हैं आपको फेमिलियर नहीं लग रही, ऐसी बातें हमने 2020 में भी सुनी थी और ये यही कुछ कर रही थी मेरा जो उस वक्त का वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था माइक पेंस उसके साथ भी। और हैरिस जो है वो बेसिकली अपनी पॉलिसी के ऊपर पर बात करना चाहती थी, हाउसिंग पे, स्मॉल बिजनेस पे, और उन्होंने बार बार कहा कि आप ट्रंप साहब की तरफ मत देखें अगर आप कंट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसने चीजें जो है मेमोराइज की हुई थी और ये बहुत ही आर्टिफिशियल लग रही थी, अनऑथेंटिक लग रही थी, यानी कि चीजें इसके दिल से नहीं लग रही थी। ट्रंप साहब जो है वैसे तो उनका आपको पता ही है बड़ा एग्रेसिव स्टाइल है, और जिस वक्त 2016 का रिपब्लिकन प्राइमरी चल रहा था तो जनरल इलेक्शंस जो हो रहे थे उसमें हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट ये काफी बोले थे, 2020 में काफी ये करते थे, बाइडन साहब को इंटरप्ट करते रहे, ये सारी चीजें इनको बैकफायर की थी। जिस वक्त अभी ये जून की डिबेट हुई थी तो उसमें जरा ये थोड़े से कंपोज नजर आए, और कल भी लग रहा था कि इनकी कैंपेन टीम ने इनको बोला है जरा आप थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाएं। तो इन्होंने कोई पर्सनल अटैक्स नहीं किए हैरिस के ऊपर, बल्कि उनकी पॉलिसीज जो हैं उसके ऊपर बात करते रहे। लेकिन एक जो वाकया था जिसको कि उन्होंने कोट किया कमला हैरिस ने कि ये मेरी जो एथनिसिटी है, बल्कि वो जो मॉडरेटर था उसने कहा कि भाई आप उसके ऊपर बात करते रहे, कहते हैं हाँ तो मैंने पढ़ा है, एक जगह पे इसने कहा मैं इंडियन हूं, दूसरी जगह पे इसने कहा मैं ब्लैक हूं, तो मैंने तो जस्ट सिर्फ ये कहा कि मुझे तो अभी ये बात इसके बारे में पता चल रही है। तो यानी कि उन्होंने बहुत उसको डाउन प्ले करने की कोशिश की। बेसिकली ये जो कल की डिबेट थी इसके अंदर इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, एबॉर्शन, टैरिफ्स ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स, इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, यूएस मेक्सिको बॉर्डर वॉर, क्राइम्स, गन वायलेंस और फॉरेन पॉलिसी के जो मुद्दे थे उनके ऊपर बातचीत हुई। दोनों ने ही कल अगर आपने देखा होगा तो वो डॉट कलर के सूट्स पहने हुए थे और अमेरिकन फ्लैग की पिन लगाई हुई थी। उसके बाद इन्होंने जब ये डिबेट खत्म हुई उस वक्त इन्होंने हाथ नहीं मिलाए और दोनों ही अपने स्टेज से अलग-अलग जो है बगैर हाथ मिलाए उतर के चले गए। लेकिन आज की जो बहुत ही हैरत अंगेज बात थी, आपको पता है कि आज 9/11 भी है, 9/11 भी आज था तो उसकी एनिवर्सरी थी, तो बाइडन साहब भी, कमला हैरिस और ट्रंप सबके सब जो है वही न्यूयॉर्क जो साइट है जहां पे के वो वाक्य हुआ था वहां पे ये तीनों आज इकट्ठे देखेंगे। तो मतलब है कि व्हेन इट कम्स टू अमेरिकन इंटरेस्ट तो आपको अमेरिका इनके लीडर्स जो है एक जगह पे नजर आएंगे। तो लोगों को काफी हैरत हुई कि बाइडन और हैरिस जो है उनका तो आना बनता था लेकिन ट्रंप साहब भी पहुंचे हुए थे। अच्छा जनाब, यूके की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही फ्लैट चल रही है, जुलाई के महीने में भी ऑन मंथ बेसिस बिल्कुल फ्लैट रही और अगस्त में भी कुछ इतना उसने अच्छा कुछ जोर यानी कि नहीं दिखाया। ऑफिस फॉर नेशनल स्टेटिस्टिक्स डाटा जो है उसने इसके ऊपर बात की और उन्होंने कहा जी कि जीडीपी भी जो है वो बिलो एक्सपेक्टेशन रही अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, और वैसे तो ये सोच रहे थे कि कुछ ग्रोथ होगी 0.2% के लिए, लेकिन यूके ने कोई भी जीडीपी ग्रोथ जो है वो शो नहीं की और स्लाइट ग्रोथ 0.1% की जुलाई में नजर आई थी। और जो है वो इसमें जो बेसिकली जो प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन के सेक्टर्स हैं वो नीचे गए हैं। इसके साथ साथ जो चांसलर हैं यूके की रेचल रीव्स, उन्होंने कहा है कि अब जो आने वाला बजट है अक्टूबर 30 को उसके अंदर बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजंस हमको लेने पड़ेंगे टैक्सेस से और स्पेंडिंग से रिलेटेड। उन्होंने कहा जी कि जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी यूके के अंदर, उस वक्त तक यूके में इकोनॉमिक ग्रोथ, गुड जॉब्स, डिसेंट वेजेस बिल्कुल नहीं आ सकेंगी। रेचल साहबा जो हैं उनको कुछ दिन पहले काफी ज्यादा जो है वो किया गया था, क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि उसने कहा जिस वक्त से मुझे इन्होंने चांसलर बनाया है यहां पे और जो मुझे कह रहे हैं कि जी बजट बनाएं आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब एक दो तीन नहीं, आमिर जरा देखो हम कहते हैं हमारे मुल्कों में मिसमैनेजमेंट है। रेचल रीव्स का कहना है कि ब्रिटिश जो फाइनेंसेस हैं उसके अंदर 22 बिलियन पाउंड्स, नॉट इवन डॉलर्स, 22 बिलियन पाउंड्स का ब्लैक होल है इन पब्लिक फाइनेंसेस दिस ईयर, और इसको कह रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा पैसा जो है वो कहां गया है। यानी कि एक दो बिलियन भी जो होता है वो भी आपको पता ही है और वो भी डॉलर्स जो होते हैं वो बहुत बड़ी रकम है, अब ये 22 बिलियन पाउंड्स हैं, तो वो कह रही है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि ये कहां पे हैं। तो उसमें जो है लोगों ने कहा कि अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर किसको पता चलेगा, पता तो आपको करना पड़ेगा, इट्स अ ह्यूज जाहिर है कि नंबर है तो ऐसे है। चैनल 12 की आज न्यूज है जी, और इसके मुताबिक यूएस जो है वो कुछ खुश नहीं है इजिप्ट और कतर से, एंड वाइस वर्सा, इजिप्ट एंड कतर जो हैं वो भी एट ऑड्स हैं विद देम। और दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। इजिप्ट और कतर यूएस को कह रहे हैं कि भाई जो ये इसराइल है, ये जो नया प्रपोजल है उसमें डेडलॉक लाए हुए है और कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है, जबकि यूएस कह रहा है कि हमास जो है वो डेडलॉक की तरफ जा रहा है और ये नई नई चीजें लेके आ रहा है, जैसे कि वो कह रहा है कि तमाम पैलेस्टीनियन सिक्योरिटी प्रिजनर्स को छोड़ा जाए, तो ये नई नई चीजें लाएगा तो चीजें ऐसे कैसे चलेंगी। ये डिसएग्रीमेंट जो है अब इन निगोशिएटर्स के साथ, यानी कि इजिप्ट और कतर के साथ जो कि इस निगोशिएशन में बैठे थे, इतनी ज्यादा मीडिएट की जो कर रहे थे टॉक, इतनी ज्यादा बढ़ गई है यूएसए के साथ कि इन साइड सोर्सेज कह रहे हैं कि, और ये चैनल 12 के मुताबिक भी, कि इजिप्ट और कतर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट लाएंगे जिसके के अंदर वो इसराइल को ब्लेम करेंगे कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट और ये प्रपोजल ला रहा है इसको इसराइल जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। कतारी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी और इजिप्शियन इंटेलिजेंस डायरेक्टर अब्बास कमाल जो हैं उन्होंने मीटिंग की है हमास के निगोशिएटर्स के साथ इस डेडलॉक को ब्रेक करने के लिए। वैसे तो उन्होंने हमास को भी कहा है कि तुम भी थोड़ा जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, लेकिन इनसाइड सोर्सेज कहते हैं कि ये जो दोहा के अंदर मीटिंग हो रही है इसके अंदर इन्होंने और एडिशनल डिमांड्स जो हमास ने रखी हैं उसकी वजह से चीजें जो हैं आगे नहीं चल रही हैं। अब व्हाइट हाउस जो है अब ये सारी की सारी गाजा डील की स्ट्रेटजी असेस कर रहा है। बाइडन साहब के जो टॉप एड्स हैं वो कह रहे हैं कि ये जो नया प्रपोजल है ये आगे नहीं जा रहा है, क्योंकि दोनों ने ही, इसराइल ने भी और हमास ने भी, बहुत टफ पोजीशन जो है टॉक्स पे ले ली है। सीनियर इसराइली ऑफिशियल्स ने इस चैनल को बताया है कि ये इस वक्त टॉक्स जो है बिल्कुल स्टेलमेट पे, यानी कि बिल्कुल रुके हुए हैं, आगे बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। इसराइल के जो नेशनल यूनिटी चेयरमैन है बेनी गैंट्स, इस बीच में उनकी मुलाकातें कतारी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ हुई हैं और उनकी जो हॉस्टेजेस की फैमिलीज हैं उनके साथ भी ये मिले हैं एट द वर्ल्ड ज्यूइश कॉन्फ्रेंस पेरिस में, और उसके जो प्रेसिडेंट हैं रोनाल्ड लॉडर उसके साथ भी मुलाकातें हुई हैं। ये जो हॉस्टेज निगोसिएशंस हैं ये बिल्कुल डिस्कस नहीं की गई थी इन दोनों के बीच में, यानी कि कैंट्स और कतारी प्राइम मिनिस्टर के बीच में, हालांकि 3 घंटे की मीटिंग इनके बीच चलती रही, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूज गैंट्स जो है उन्होंने कॉन्स्टेंटली प्राइम मिनिस्टर को कहा कि भई ये जो है इसराइली हॉस्टेजेस इनको छोड़ा जाए। गैंट्स और कतारी प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफी क्लोज हैं, क्योंकि गैंट्स जिस वक्त डिफेंस मिनिस्टर भी थे उन दिनों से इन दोनों के बीच में काफी दोस्ती है, ये आपस में एक दूसरे से काफी खुल के बात करते हैं। तो बहरहाल जी, डील जो है वो कहीं पे भी सीज फायर की जाती नजर नहीं आ रही है और इस बीच में दबादब जो है इसराइल मारता जा रहा है पैलेस्टीनियंस को, और कोई उनको रोक नहीं रहा और कोई वेस्टर्न वर्ल्ड को ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नजर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। पता नहीं कौन सा चश्मा पहन के बैठे हुए हैं एज फार एज पैलेस्टाइन इज कंसर्न। वर्ल्ड्स बिगेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर एंड द लार्जेस्ट ऑयल कंपनी सऊदी अरामको, इसने साइन किए हैं जी मोर अग्रीमेंट्स विद चाइनाज रोंगशेंग पेट्रोकेमिकल एंड हैंगली ग्रुप, और इसमें उन्होंने कहा जी कि हम अपना कोऑपरेशन रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल सेक्टर्स इन चाइना और सऊदी अरेबिया के अंदर बढ़ाना चाहते हैं। अरामको ने ये जो साइन किया डील विद डेवलपमेंट फ्रेमवर्क अग्रीमेंट विद रोंगशेंग फॉर पोटेंशियल ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ सऊदी अरामकोज जुबेल रिफाइनरी कंपनी, और ये जो इनकी डील थी और सारी बात जो थी वो अप्रैल से चल रही थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि इसके लिए हम सऊदी अरामको जुबेल रिफाइनरी को के लिए एक ज्वाइंट हम वेंचर जो है मिलकर चलाएंगे। इसके साथ साथ जो है दोनों ही पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भी अपने जो ये फ्रेंडशिप है इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। रोंगशेंग जो है वो बाय करेगा 50% स्टेक इन SASREF और अरामको जो है वो एक्वायर करेगा 50% इन रोंगशेंग्स अफिलिएट निंगबो जोंगलिंग पेट्रोकेमिकल को लिमिटेड। ये डील जो है इट इज वर्थ $3.5 बिलियन। तो ये काफी बड़ी जनाब डील है। और जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय चांदनी विक्टोरिया बैंक्वेट हॉल। यहां पे आप अपने छोटे बड़े हर तरह के इवेंट्स जो हैं वो कर सकते हैं, और 1400 लोगों की कि दावत की यहां पे फैसिलिटी है। आपका अपना खुद का कोई पर्सनल भी इवेंट है या कि आपका कोई कॉर्पोरेट इवेंट है तो आप यहां पे कर सकते हैं। इनका नंबर है 6479653823, उस पर कॉल करके आप ज्यादा डिटेल्स इनसे ले सकते हैं। और जनाब, डॉक्टर फियाज कुरैशी हर तरह की डेंटिस्ट्री की सर्विसेज आपको देते हैं, तो आपको अगर कोई भी इस तरह की सर्विस चाहिए तो आप इनके 3 क्लिनिक्स हैं, 2 मिसिसागा में, 1 स्कार्बरो में, उसमें आप जा सकते हैं। मिसिसागा के जो क्लिनिक्स हैं उनका नंबर है 5678 और स्कारब्रो का जो है 4167579999 इनका नंबर है। ओके जी, आज थी जनाब 9/11 लेकिन आज जो है जिना साहब की 76th डेथ एनिवर्सरी भी थी। और आज बड़ी मुझे हैरत हुई कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा जी कि हमको कायद के आइडियल्स पे चलना पड़ेगा और उसकी गाइडेंस लेके हम प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव कर सकते हैं। खासतौर पे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा कि जिन्हें के जो प्रिंसिपल्स थे यूनिटी फेथ डिसिप्लिन, वो अगर हम अपनाएंगे तो हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। और उन्होंने जो है आज पाकिस्तानी कौम को कहा कि आप प्लीज जिना साहब के आइडियल्स को एम्ब्रेस करें। आज सुबह सिंध के चीफ मिनिस्टर जो हैं मुराद अली शाह, सीनियर मिनिस्टर शर्जील इमाम मेनन, इंटीरियर मिनिस्टर जियाउल हसन और दूसरे बहुत से जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कायद के मसोलियम के ऊपर हाजिरी दी कराची में और फातिहा पढ़ी। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर ने और सिंध के गवर्नर ने वहां पे फ्लावर रीथ भी रखा उनके मजार के ऊपर। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा जी कि जिना साहब ने एम्फोसाइज किया था यूनिटी और फेथ में, जो कि रेजोनेट करता है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के साथ, और हमारी जो स्ट्रेंथ है इट लाइज इन डायवर्सिटी एंड इंक्लूसिवनेस। तो भाईजान इसके लिए आप क्या कर रहे हो फिर बताओ जरा। तो जो है वो बहरहाल जी ये बातें जो है बस बातें ही होती हैं। आज मैं करना चाहती थी जिना साहब के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट लेकिन मैंने कहा जी क्या फायदा है, आइडियल्स तो उसकी हम मान नहीं रहे हैं, कोई उसकी हम बात तो मानते नहीं है, ऐसे ही उस इतने अजीम आदमी को याद करना और फिर अपने आप को रुलाने वाली बात है। क्योंकि आज तो जरदारी साहब की मुझे बातें सुनकर बड़ी हैरत हुई है कि यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन, तो भाईजान इसमें से कौन सी चीज है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी मैं आज पूछना चाहती थी कि भाईजान आप कौन सी उनकी फॉलो कर रहे हैं। तो आप कौम को कह रहे हैं कि जी आइडियल्स जिना के अपनाओ, आपने कितने अपनाए हुए हैं। ये बिल्कुल उसी तरह मौलवी वाली बात है कि जी जिहाद के लिए जाओ, कौम के बच्चों को जिहाद पे भेज रहे हैं और अपने बच्चों को अमरीका भेज रहे हैं, है ना। तो बस ये वैसे ही है कि कौम को कह रहे हैं जी जिना के आइडियल्स अपनाओ लेकिन हम नहीं अपनाएंगे, हैं जी। तो आज बस बड़ी हैरत की वाले कदर है कि जिक्र तो हमको आज करना था इसका। नेशनल असेंबली जो है जी उसमें आज बड़ा ही रेयर व्यू देखा गया क्योंकि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों एक ही ग्राउंड पे नजर आए। यूनानिमसली उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास की है और उन्होंने कहा है 16 मेंबर कमेटी जो है उन्होंने कहा जी कि हम उसको बनाएंगे। और ये जो पीटीआई के लॉ मेकर्स के साथ पार्लियामेंट हाउस की प्रेमिसेज में जो बदतमीजी की गई है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके ऊपर ये जो रेजोल्यूशन थी ये टेबल की थी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारड़ साहब ने और उन्होंने कहा जी कि फिर ये इस तरह की हमको एक कमेटी बनाने की जरूरत है। इससे पहले आपको हमने कल भी बताया था और आज फिर स्पीकर जो है अयाज सादिक साहब वो प्रिजाइड कर रहे थे नेशनल असेंबली का सेशन और उन्होंने आज सस्पेंड किया है हाउस सर्जेंट एट आर्म्स और फोर अदर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, जिसके के अंदर जो थे सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और दूसरे जो तीन जूनियर स्टाफ था उसमें उबैद अल्लाह, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून जो थे वो थे। उन्होंने कहा जी के लेकिन अयाज सादिक साहब ने कि हमने तो इसका फौरन नोटिस लिया लेकिन इमरान खान साहब जिस वक्त रूल कर रहे थे तो उस वक्त के जो स्पीकर थे असद कैसर साहब, जब हमारे लोगों के साथ बदतमीजी हुई थी तो उन्होंने कोई भी एक्शन जो था नहीं लिया था। बट टू रॉन्ग्स डोंट मेक राइट, तो इसलिए मैं जरूर एक्शन लूंगा क्योंकि ये बिल्कुल गलत बात है और हम पार्लियामेंट की रिस्पेक्ट जो है उसको अपहोल्ड करेंगे और हम इस मामले के तय पे पहुंचेंगे कि पार्लियामेंट के प्रेमिसेस से पीटीआई के लोगों को कैसे लेकर गए। इसके बाद उन्होंने इन्वाइट किया पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को, उन्होंने कहा जी आए हमारे साथ बैठे और बात करें। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी इसको एक शेमफुल एक्ट कहा और उन्होंने कहा जी कि ये हाउस की सेंक्टिटी की वायलेशन जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने की है और ये कैसे और किसने उसकी इजाजत दी उनको करने के लिए। तो जैसे अमेरिका में बड़ा रेयर सीन देखा गया आज तीनों लोग साथ में थे, आज वैसे ही यहां पे भी दोनों जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो साथ में नजर आई इसके ऊपर। इमरान खान साहब ने कहा जी कि मेरे दरवाजे बात के लिए बंद हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और उन्होंने अपना स्टैंस जो है अब हार्डन कर लिया है। मीडिया ने इसे आज बात कर रहे थे, अडियाला जेल में आए थे यहां पे तोशाखाना टू के केस यानी कि जो न्यू तोशाखाना केस है उसकी हियरिंग के लिए। उन्होंने कहा जी मैं अब बिल्कुल बात नहीं करूंगा, वैसे तो हमने अपने दरवाजे ओपन रखे हुए थे, हम कहते थे पॉलिटिकल पार्टी से भी एस्टेब्लिशमेंट सबसे बात करें लेकिन जो मेरी पार्टी के छह लोगों को पकड़ कर, नहीं उन्होंने कहा जी मैंने अपनी पार्टी के छह लोगों को कहा हुआ था कि आप एस्टेब्लिशमेंट और जो है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करें लेकिन इन्होंने हमें डिसीव किया, हमें चीट किया तो हम अब इनके साथ बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी कि जो कुछ मेरी पार्टी के साथ हुआ है उसके ऊपर जो है मैं गुस्से में हूं, यानी कि मैं अपसेट हूं और उसकी वजह से मैं कह रहा हूं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि पीटीआई जो है वो अपना लाहौर का रैली जो है वो सितंबर 21 को करेगी, चाहे उसको गवर्नमेंट का परमिशन या मिलता है या नहीं, या रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगाई जाती हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल केपी के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो उसने स्पीच की थी उसने नेशन का सेंटिमेंट जो है वो प्रेजेंट किया था, और जो कोई भी गंडापुर के साथ खड़ा नहीं हो रहा वो बुजदिल है, कावड़ है। और उन्होंने कहा जी कि मैं हर उस बंदे को जो कि बुजदिली दिखा रहा है और खड़ा नहीं होना चाहता और बैकआउट कर रहा है गंडापुर के कमेंट से, वो बेशक पार्टी जो है वो छोड़ सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि फैसल वावड़ा साहब तो बड़े आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, कभी आपकी पार्टी का हिस्सा थे। उन्होंने कहा जी वो जिनका माउथ पीस है वो हमें पता है और वो इज जस्ट ए माउथ पीस, तो उसकी बातों को यानी कि उनका कहने का मतलब था ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि अरशद शरीफ का जो मर्डर केस है उसका एक ओपन ट्रायल होना चाहिए और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी और जस्टिस दिखाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको पता ही है कि ये जो रेस्टोर की थी अमेंडमेंट आई थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 की, तो उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शरीफ जो हैं अब वो कह रहे हैं कि जी हमारे केसेस जो हैं उनको ट्रांसफर किया जाए। ये जो था खासतौर पर रमजान शुगर मिल का जो रेफरेंस था टू नैप, आज का जो हियरिंग थी उसके अंदर इनके जो लॉयर्स थे उन्होंने भी ये कहा कि इनके जो क्लाइंट्स का जो अब केस है वो इनएडमिसिबल है जब ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है उसका कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो ये केस। आपको पता ही है कैसी सिमिलर बातें जो है कल इमरान खान साहब के लॉयर्स ने भी की थी। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो रमजान शुगर मिल्स का केस है ये अब जो है एंटी ग्राफ्ट बॉडी जो है वो इसको नहीं कर सकती है, तो उसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि अब इसकी हियरिंग जो है अक्टूबर 1 को होगी। ऑन फरवरी 18, 2019 एंटी ग्राफ्ट बॉडी ने ये जो रेफरेंस लेकर आए थे हमजा शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ जब ये फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी इन्होंने अपनी अथॉरिटी को मिस यूज करते हुए 10 किलोग्राम स्लज करियर कंस्ट्रक्शन जो था चिनियोट के अंदर बनाया था टू फेसिलिटेट रमजान शुगर मिल्स जो कि इसके बेटे ओन करते हैं, उसकी वजह से नेशनल एक्सचेकर को 213 मिलियन रुपीज का नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये जनाब सारी बातें आज की। सुप्रीम कोर्ट को आज सामने आना पड़ा और उसको क्लेरिफिकेशन देनी पड़ी और उन्होंने कहा जी कि ये एक ऑफ द रिकॉर्ड कॉन्वर्सेशन थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की मीडिया के साथ, उसको अननेसेसरली नीडलेसली इनएक्यूरेटली ब्रॉडकास्ट पब्लिश और सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अहमद सेक्रेटरी टू सीजीपी उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा रिग्रेटेबल है कि ये सारा कुछ किया जा रहा है और उसको इतनी ज्यादा अटेंशन दी जा रही है और कुछ लोग जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के मुद्दों से, जो कि ये है कि लोगों को सर्व किया जाए। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट जो है जुडिशियल ईयर मना रही थी और कुछ लोगों को उन्होंने चाय पे इनवाइट किया था और उनके जर्नलिस्ट जो हैं बहुत सारे उनके सीजेपी साहब के गिर्द जमा हो गए थे और उन्होंने बहुत क्लियरली उनको बताया था कि मैं जो भी आपसे बात करूंगा ऑफ द रिकॉर्ड करूंगा, तो अब उस टॉक को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और उसको फैलाया जा रहा है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उस दिन क्या हुआ हम आपको एग्जैक्टली बताएं। जर्नलिस्टों ने भी दे अन्नी चुकी हुई है ना जी पाकिस्तान दे विच, की कर सकता है बंदा। आपको याद ही है कि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि पंजाब ने 14 रुपीज पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर सब्सिडी देने की बात की थी पंजाब में, जिसमें कि इस्लामाबाद के कंज्यूमर्स भी शामिल थे। आज पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि इस्लामाबाद के जो कंज्यूमर्स हैं उनको ये सब्सिडी नहीं दी जाएगी। अगस्त के महीने में तो दे दी लेकिन अब जो है जो सितंबर का महीना है इसके अंदर नहीं दी जाएगी। ये डिटेल्स जो है आज इस्लामाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी आइस्को जो है उसने दी है। तो उन्होंने कहा है जी कि ये जो सब्सिडी थी इट वॉज वर्थ 45 बिलियन रुपीज जो कि अनाउंस की गई थी अगस्त 16 को बाय पीएमएलएन प्रेसिडेंट नवाज शरीफ इन पंजाब, और उन्होंने कहा था कि ये पंजाब और इस्लामाबाद में अगस्त और सितंबर में कंज्यूमर्स जो यूज कर रहे हैं 201 to 500 यूनिट्स पर मंथ उनको ये दी जाएगी। पंजाब गवर्नमेंट को इसके ऊपर सिंध और केपी की गवर्नमेंट ने बेतहाशा क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने कहा था जी कि ये 2 महीने की सब्सिडी जो है इसका कुछ फायदा नहीं है, ये शॉर्ट टर्म जो आपकी अटेम्प्ट है टू गिव रिलीफ टू मैसेज ये ज्यादा जो है ये अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद जो आप पैसे उनसे लेंगे वो बहुत ज्यादा उसमें पावर पे टैरिफ्स जो है बढ़ाने पड़ेंगे, तो आप ये ना करो। तो उसके रहते आज जो है एटलीस्ट इस्लामाबाद के जो कंज्यूमर हैं उनसे ये वापस ले ली गई है। आज सेनेट के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट बिल जो है वो और बड़ा ही शर्मनाक है, मुझे नहीं पता कि मुझे पता नहीं ये खबर करनी भी चाहिए, लेकिन ये यूनैनिमस अप्रूवल आया है, अमेंडमेंट्स आई हैं पाकिस्तान पीनल कोड अमेंडमेंट बिल 2024 में, जिसमें कि क्रिमिनलाइज किया गया है नेक्रोफिलिया को। ज्यादा डिटेल्स ना देते हुए उसमें यह होता है कि कोई आदमी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करता है एक डेड बॉडी के ऊपर, जिसकी के बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही थी कि लोग जो हैं दफनाने से पहले ये कुछ कर रहे हैं, इसका जो था फिर नोटिस लिया गया था और एक लॉ बनाने के लिए कहा गया था। ये जो मीटिंग थी ये कन्वीन की थी सेनेटर शहादत आवान ने पार्लियामेंट हाउस में, एंड इट वाज अटेंडेड बाय सेनेटर्स इरफान उल हक सिद्दीकी एंड समीना मुमताज जाहरी। इनफैक्ट समीना मुमताज जाहरी जो हैं वो इस बिल को उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। उन्होंने कहा जी कि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में, दूसरी नेशंस ने भी इनके ऊपर बड़े सख्त लॉज बनाए हैं और जो कुछ भी अब ये करता हुआ पकड़ा गया उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि लाश की ये बेहुरमती है, तो उसके लिए उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल गलत है। आज पंजाब केपी और इस्लामाबाद के अंदर अर्थक्वेक के झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक ये जो 5.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रिक्टर स्केल के ऊपर जो है वो आज रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन यूएस जियोलॉजिकल सर्वे जो है उसने इसको 5.4 रिक्टर स्केल पे कहा था इसका मैग्नीट्यूड, और उसने कहा कि सिर्फ इसने पाकिस्तान में पंजाब केपी और इस्लामाबाद नहीं बल्कि इसने इंडिया और अफगानिस्तान जो है उस तक को भी, वहां तक भी झटके महसूस किए गए हैं। इसका जो ओरिजिन था वो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 12:28 PM था और इसका एपिसेंटर जो था डीआई खान था और इसकी डेप्थ जो थी 10 किलोमीटर्स थी, और आपको पता ही इससे पहले अगस्त 29 को भी इसी तरह के जो हैं वो अर्थक्वेक के जेट के महसूस किए गए थे। और जनाब एक फिल्म बेस्ड ऑन मीना कुमारी की जो लव स्टोरी थी उनके हस्बैंड के साथ कमाल अमरोही के साथ, उसको अब बनाया जा रहा है और उस फिल्म का नाम है कमाल और मीना। इसकी शूटिंग जो है वो 2025 में शुरू होगी, सारे गामा विद बिलाल अमरोही जो हैं एंड अदर पार्टनर्स वो ये बायोपिक बनाएंगे। इसका उन्होंने आज ऐलान ज्वाइंट इंस्टाग्राम पोस्ट में किया। ये जो वीडियो है वो शुरू होती है इनकी विंटेज फोटोज के साथ मीना कुमारी जी की, और उसमें कुछ उर्दू में लिखे हुए खत हैं। बैकग्राउंड के अंदर मीना कुमारी और कमाल अमरोही की आवाजें सुनी जा सकती हैं, और फिर एक शॉट पाकीजा से इसके अंदर डाला गया है, और उसकी कैप्शन जो है आज ये जो वीडियो आई है उसकी कि एक फिल्म मेकर एक न्यूज और ये दोनों जो थे इनकी लव स्टोरीज ने क्रॉस किया और फिर एक ऐसी ड्रीम बनी जिसको के जो है जिसके के लिए मरा जा सकता है। इनकी जो प्यार की कहानी है वो मौत से भी आगे है, यानी कि अभी भी वो याद रखी जाती है। और फिर पीछे वीडियो के हल्का सा सॉन्ग चल रहा है चलते चलते कोई मिल गया था फ्रॉम जो मीना कुमारी की फिल्म थी पाकीजा उससे। आज मुंबई के अंदर काफी खलबली मची क्योंकि मलाइका अरोरा या उनको कहना चाहिए, अब तो उनको खान नहीं रही, उनके फादर की डेथ हुई। जब फादर की उनके की डेथ हुई तो बेशुमार मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स जो थे वो देखे गए उनके घर के बाहर बांड्रा के अंदर, और फिर वहां पे भागी भी देखा गया कि मलाइका भी और उनकी बहन अमृता जो हैं वो भी पहुंचे हैं। इसके साथ साथ बॉलीवुड के और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो थे वहां पे आए। जब वो लोग आए तो कुछ लोगों ने शक किया, उन्होंने कहा कि शायद इनको जो है वो डिप्रेशन थी और इन्होंने सुसाइड किया है। तो पुलिस ने कहा जी कि ये अलेज सुसाइड जो है ये क्लियर नहीं है और कोई हमें सुसाइड का नोट भी नहीं मिला है, तो हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे। मुंबई पुलिस के ऑफिसर ने कहा कि अनिल अरोरा जो हैं वो इस बिल्डिंग में 6th फ्लोर पे रह रहे थे और मलाइका घर पे नहीं थी, वो पुणे गई हुई थी, बट वेन शी हर्ड द न्यूज शी रश्ड बैक टू मुंबई। और वो कहते हैं जी कि हो सकता है इन्होंने सुसाइड ना की हो लेकिन पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। एक सोर्स जो है वो भी कहता है कि हमें भी नहीं लगता कि इन्होंने जो है सुसाइड किया, एज एन एक्सीडेंट इनकी डेथ हुई है। वो एक्सीडेंट क्या है वो बताया नहीं गया अभी तक। अलबत्त वो कह रहे हैं जी कि फैमिली काफी शॉक में है क्योंकि ये बिल्कुल बीमार नहीं थे, अच्छे भले थे। आपको हम बता दें कि मलाइका अरोरा के वालिद साहब उनकी वालदा के बीच में बहुत अरसा पहले ही डिवोर्स हो गई थी और ये अकेले रहते थे। और जनाब 1997 की एक फिल्म आई थी बड़ी जबरदस्त किस्म की, जो बड़ी ब्लॉकबस्टर थी बॉर्डर, तो उसके ऊपर काफी लीगल डिस्प्यूट्स आ गए हैं। लेकिन जो प्रोड्यूसर हैं निधि दत्ता, उन्होंने कहा जी कि ये जो नई अब हम फिल्म बना रहे हैं बॉर्डर टू, इसके ऊपर इन डिस्प्यूट्स का कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि काफी स्पेकुलेशन चल रही थी कि ये जो फिल्म है सनी देओल, वरुण धवन और दलजीत दोसांझ की, जिसको के बना रहे हैं जेपी दत्ता साहब, क्या ये बन भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि एक शख्स हैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भरत शाह, उन्होंने कहा जी कि मैंने ये फिल्म मेकर जेपी दत्ता को एक तो नोटिस भेजा है क्योंकि मेरे पास हैं वर्ल्ड राइट्स कंट्रोल्स इसके, और इसके कॉपीराइट के राइट्स भी मेरे पास हैं, और पहली जो इसकी इंस्टॉलमेंट आई थी उसके भी ये सारे वर्ल्ड राइट्स और कॉपीराइट्स मेरे पास हैं, और कोई भी पार्टी जो है वो उनको मैं मना करता हूं और वार्न करता हूं कि दत्ता के साथ किसी किस्म की कोई डील ना बनाए ये फिल्म बनाने के लिए। इसके ऊपर बात करते हुए दत्ता साहब ने आज कहा जी कि ये जो है ये एक सब जुडिशियल मैटर है, हाई कोर्ट जो है इस केस को ऑलरेडी डिसमिस कर चुकी है, इनफैक्ट जो भरत शाह हैं उन्होंने हमको बहुत सारे पैसे दिए देने हैं जो कि पिछले 27 साल से नहीं दिए हैं, एज अ रिजल्ट जब तक वो हमें पूरे पैसे नहीं देगा ना तो बॉर्डर वन ना तो बॉर्डर टू के ऊपर उसका कोई भी राइट्स जो हैं वो नहीं है। तो जनाब ये आज जो है बड़ी ही एफसीएच की खबरें हैं। भारत के अंदर जो बीजेपी है उसने राहुल गांधी साहब को काफी आज स्लैम किया है, क्योंकि आपको पता ही है कि यूएस गए हुए हैं राहुल गांधी जी, और वहां पे इनकी मुलाकातें इल्हाम उमर और दूसरे लोगों से यूएस के अंदर हुई हैं, और उसके अंदर इन्होंने आज बीजेपी ने कहा कि जो लेडी एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देती है उसके साथ ये कैसे मुलाकातें कर सकते हैं। आज एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी पार्टी हेडक्वार्टर में, वहां पे बीजेपी के राज्यसभा के जो एमपी हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा जी कि ये तो जो है इनकी आदत है कि ये जो है जब भी जाते हैं तो इस तरह की बातें करते हैं और एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट करते हैं, ये कैसे मिल सकते हैं कि एंटी इंडिया एमपी से वहां पे बाहर। आपको पता ही है कि उन्होंने कहा कि आपको पता ही है कि ये वो वाहिद या उन कुछ अमेरिकन लॉ मेकर्स में से है जिसको कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनवाइट किया था पीओके का जो है एरिया उसको विजिट करने के लिए, और वैसे भी जो राहुल गांधी जी सिखों के ऊपर बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सिखों के ऊपर जो उन्होंने बात की उसको आज एंडोर्स किया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, जो कि अमरीका में ही रहते हैं लेकिन इंडिया उनको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट कहती है। उन्होंने पन्नू साहब ने कहा जी कि जो राहुल गांधी ने कहा है कि सिखों को हिन्दुस्तान में एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं और सक्सेसिव रिजीम्स जो 1947 से आई हैं वो अभी तक पंजाब की जो इंडिपेंडेंस की जो ये रेफरेंडम है खालिस्तान की उसके ऊपर कोई भी सिखों को रिलीफ नहीं दे पाई हैं, तो ये उनका हक जो है लिया जा रहा है। इसके ऊपर बात करते हुए फर्दर होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने कहा जी कि राहुल गांधी जी हमेशा एंटी इंडिया एंटी नेशनल रिमार्क्स देते हैं और ये उन फोर्सेस के साथ खड़े हैं जो कि हमारे मुल्क को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये थ्रेटन कर रहे हैं इंडिया का सिक्योरिटी और हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं उनको भी हर्ट कर रहे हैं, तो इनको चाहिए कि ये इस तरह की हरकतें ना करें। बहरहाल जी काफी मारामारी जो है इन बातों पे राहुल गांधी जी ने जो स्पीच की है उसके ऊपर चल रही है। प्रोटेस्टर्स जो हैं बहुत सारे अब जो इंडिया के इलाके हैं वहां पे क्लैश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो राइट विंग हिंदू हिंदुत्व के जो बड़े ठेकेदार आजकल बने हुए हैं वो कह रहे हैं कि ये जो मस्जिदें बनी हुई हैं हिंदुस्तान के अंदर इनको गिराया जाए। पुलिस ने आज वाटर कैनन्स किए और लाठी चार्ज किया संजौली का जो सब टाउन है वहां पे, क्योंकि वहां पे जो क्राउड है उसकी लड़ाई हुई पुलिस के साथ, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेड्स खड़े किए हुए थे एक मस्जिद तक ना जाने के लिए, लेकिन इन्होंने ये बैरिकेड्स तोड़े और इन्होंने कहा जी हम इस मस्जिद को ढाना चाहते हैं। पीडब्ल्यूडी के और अर्बन डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं विक्रमादित्य सिंह साहब जो हैं उन्होंने भी कहा है जी कि ये मैटर अभी कोर्ट में है, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर जो है यानी कि ये मस्जिद अगर इलीगल पाई गई तो इसको डिमोलिश किया जाएगा। ये सारे के सारे वाक्य जो हैं ये शिमला के अंदर चल रहे हैं और वहां पे जो है अब काफी सियासत गर्म हो गई है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि इस मुल्क के अंदर जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जो कि बात की थी राहुल गांधी जी ने भी, और बीजेपी कह रहा है कि तुम बिला वजह इसको जो है भड़का रहे हो इन चीजों को। इसके अलावा ये जो बिल्डिंग है 5-स्टोरी स्ट्रक्चर इसके ऊपर पुलिस ने कहा कि जी म्यूनिसिपल कमिश्नर का जो कोर्ट है इसके अंदर ये सारी की सारी बात जो है पेंडिंग है और अक्टूबर 5 को ये सारी बात क्लियर की जाएगी। इसी तरह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी जो दो मस्जिदें हैं जिनके बारे में हिमाचल प्रदेश का खास तौर पे और उत्तराखंड में भी, हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड और उत्तराखंड में मुसलमान जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो मस्जिदें हैं ये वक्फ की लैंड के ऊपर बनाई गई हैं और इसको मुसलमानों ने लीगली खरीदा है और बहुत अरसा पहले से कुछ मस्जिदें तो की जो जमीन थी वो 1960s में ली गई थी और उनको बनाने के लिए ये कहा गया था, लेकिन जो है हिंदू इसको मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, ये जमीन जो थी ये गवर्नमेंट की थी और इन्होंने हत्याई थी और उसके ऊपर मस्जिदें बनाई हैं और उसके लिए गिराने की इसकी जरूरत है। इसके साथ साथ यहां पे कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं जिनको के पुलिस ने जिनके ऊपर लाठी चार्ज की उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी, उन्होंने कहा जी कि मुसलमानों को कि अपनी मीट शॉप्स बंद करें और वहां पे भी वो एक मस्जिद की तरफ जा रहे थे उसको डिमोलिश करने, जब पुलिस ने उनको रोका इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये मस्जिद मोहल्ला का जो एरिया है जहां मुसलमान रहते हैं इसमें से मुसलमानों को निकालें। तो चीजें तो जनाब भड़क गई हैं हिंदुस्तान में भी, जो है काफी एथनिक क्लैशेस जो हैं वो हैं। पाकिस्तान ने जनाब अपनी पहली जीत आज मनाई इन द ऑन गोइंग